Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और सुसुप्ति में चला जाता है भैया, है ना? तो इसलिए बोलते हैं पीत्वा सर्वान विशेषान, सभी को पी लेता है, सभी को पिहा, ना स्थूल विषय है ना सूक्ष्म विषय है। ये जो विशिष्ट है, विशिष्ट ज्ञान, तो विशिष्ट ज्ञान कहां पर हो रहा है? जागृत में भी हो रहा है और स्वप्न में भी हो रहा है। जागृत का विषय हो गया स्थूल और स्वप्न का विषय हो गया सूक्ष्म। ये जो विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, अलग अलग जो ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान कहां पर नहीं होगा? सुसुप्ति में नहीं होता है। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं सर्वान विशेषान पित्वा स्वपिति, सो जाता है। कहां पर सो जाएगा? अपने कारण में सो जाता है, सभी को लीन कर लेता है, है ना? अज्ञान जो आत्मा है ईश्वर, अज्ञात जो आत्मा ईश्वर है, उसी में सब एकीभूत हो जाते हैं। आगे बताएंगे, मंत्र में ही बताएंगे, है ना? लेकिन संस्कार रहता है, संस्कार। ये माता है, ये पिता है, भाई है, ये पुस्तक है, गुरु है, शिष्य है, है ना? ये सभी का ज्ञान हुआ था कि नहीं जागृत में? उसका संस्कार रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, सुसुप्ति में रहेगा। यदि न रहे तो सो करके उठेगा तो भूल जाएगा कि नहीं, है ना? अपनी माता से पूछेगा आप कौन है, नहीं पूछेगा? हाँ तो हाँ, लेकिन पूछता तो नहीं, तो क्यों नहीं पूछता है? हाँ हाँ, ज्ञान संस्कार, संस्कार रहेगा सुसुति में, समझ में है ना? हाँ, तो उसको प्रकाशित कौन करेगा? साक्षी प्रकाशित करेगा। सो जाते ना भैया, तो सो जाते हैं सुसुप्ति में, तो किसका अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है। उठने के बाद जो बोलता है कि अहम सुखम अस्वाप्सम, बड़े सुख से सुआ, हो गया कि नहीं? और सुसुप्ति का सुख सभी का एक होता है, क्योंकि ईश्वर के साथ एकीभूत हो जाता है। जीवात्मा एकीभूत हो जाएगा ना? एकीभूत तो हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वरूप ईश्वर है ये भान नहीं होता है। परमात्मा के साथ एक होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? मेरा स्वरूप परमात्मा है ये अनुभूति नहीं होती है, हो गया कि नहीं? सती संपद्य न विदु हो, परमात्मा के साथ एक तो होता है लेकिन जान नहीं पाता है, ठीक है ना भाई? तो सुसुप्ति में किसका बान होगा? सुख का होगा। सुख कहां से आ गया? अविद्या की वृत्ति, मन की वृत्ति नहीं, मन तो लीन हो गया सुसुप्ति में, अज्ञान में लीन हो गया, है ना? तो सुख कहां से आ गया? ये सुख तो स्वरूप सुख नहीं है। सुसुप्ति में जाएगा तो स्वरूप सुख है क्या? स्वरूप सुख तो भाई अज्ञान जब तक है, स्वरूप सुख का अनुभव नहीं होगा। अज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति होती नहीं है सुसुप्ति में, हो गया ना? तो अविद्या की वृत्ति होती है, मन की वृत्ति नहीं है। अविद्या की जो वृत्ति हुई, सुखाकार वृत्ति होगा ना, उस सुखाकार वृत्ति में परमात्मा का जो आनंद अंश है वो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंबित हो जाता है सुखाकार वृत्ति में, होगा ना? उसको प्रकाशित कौन करेगा? साक्षी प्रकाशित करेगा, साक्षी, ठीक है ना? तो अज्ञान में तीन प्रकार की वृत्ति हो जाती है। एक तो अहमाकार वृत्ति हो जाएगी, मैं करके, उठने के बाद बोलता है कि नहीं मैं सुख से सुहा था, तो अज्ञानी अविद्या ही बन जाती है, अहमाकार वृत्ति बन जाएगी, और एक सुखाकार वृत्ति हो जाएगी, सुख से सुहा, अरे अज्ञानकार वृत्ति हो जाएगी, कुछ नहीं जाना, तो कितने हो गए? हो गए ना, अहमकार वृत्ति मैं करके, है ना, सुखाकार वृत्ति और अज्ञानकार वृत्ति, ये तीनों को प्रकाशित करेगा कौन? साक्षी हो गया, साक्षी करेगा, होगा ना? तो साक्षी अनुभव हुआ, उसका संस्कार रहेगा, संस्कार रहेगा, समझ में कि नहीं? तो संस्कार कहां पर रहेगा? संस्कार अज्ञान में रहेगा, मन में तो नहीं रहेगा, मन तो लीन हो गया। संस्कार कहाँ पर रहेगा? अज्ञान में रहेगा, अज्ञान में संस्कार पड़ा है। सुषुप्ति कालीन जो अनुभव हुआ साक्षी के द्वारा, साक्षी अनुभव के द्वारा संस्कार जो होगा वो संस्कार रहेगा अविद्या में, अज्ञान में रहेगा, हो गया ना। और उठने के बाद उसका स्मरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्मरण हो जाएगा। कोई बोलेगा आपको बता देते हैं, वेदांत का एक रहस्य है भाई, संस्कार रहा अविद्या में सुषुप्ति काल में, है ना, आपको स्मरण हो रहा है जागृत में, किससे? मन से हो रहा है, लेकिन मन में तो संस्कार है ही नहीं, तो स्मरण कैसे होगा? कोई बोलेगा ऐसा, संस्कार कहाँ पर है? अज्ञान में, मन में तो है ही नहीं। तो उड़ने के बाद जो स्मरण हो रहा है आपको, मैं सुख से सुहा था, कुछ नहीं जाना, तो संस्कार कहाँ पर रहा? संस्कार अविद्या में है कि मन में है? मन में तो है ही नहीं, अविद्या में हो, मन तो लीन हो गए, तो मन में संस्कार है नहीं, है ना। फिर स्मरण कैसे हुआ, मैं सुख से हुआ? इसको ऐसा समझना, देखो अविद्या है कारण, कार्य है मन, तो कारण का धर्म कार्य में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जैसे तंतु से बन गया कपड़ा, तंतु लाल है तो कपड़ा भी लाल होगा कि नहीं होगा, है ना। कारण का धर्म कार्य में आता है कि नहीं आता है? आता है ना भैया। इसी प्रकार से कारण हो गई अविद्या, अविद्या में संस्कार पड़ा है, किसका? सुख का, अज्ञान का, मैं का, है ना, ये सब कारण में जो संस्कार है, इसका धर्म उड़ने के बाद किस में आ जाएगा? मन में आ जाएगा। समझ में आई ना। तो देखो जागृत में जो व्यक्ति था अभिमानी, वही सपने में भी है और वही सुषुप्ति में, तो आदमी तो एक ही है, हो गया ना। अवस्था बदलने से आदमी नहीं बदलता, कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदल जाता है, समझ में ना। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, देखो पित्वा सर्वान विशेषान सपिति मधुर भुंग, ये मधुर रस को भोग करता है भैया सुसुप्ति में। क्या मधुर है ना, सभी का मधुर एक ही होता है सुसुप्ति में, राजा का भी और फकीर का भी। चाहे रसगुल्ला खाकर सो जाओ, चाहे सूखी रोटी खाकर सो जाओ, सभी का सुख एक होगा कि नहीं होगा? दो सुख नहीं होता है सुसुप्ति का, एक ही सुख होता है, समझ में है ना। क्योंकि वहां पर विशेष नहीं ना है कि तुम रसगुल्ला खाए हो कि रोटी खाए हो, इससे कोई मतलब नहीं है, है ना। सुख तो एक ही होगा, इसलिए बोलते हैं मधुर, मधुर भुक, मधुर को भोग करता है, हो गया ना। सामान्य सुख को भोग करेगा, विशेष सुख नहीं है। विशेष सुख कहां पर होगा? विषय के द्वारा विशेष सुख होगा, वहां पर कोई विषय नहीं है, ना रसगुल्ला है, ना कोई मन है, ना इंद्रिय है, ठीक है ना। तो मधुर भुंग, तो भोग कराने वाला कौन है? परमात्मा है। देखो जीव को भोग कराने वाला परमात्मा है, किसके माध्यम से? बोलते कि माया भोजयन्नः, माया के द्वारा परमात्मा भोग कराता है। फिर माया यदि उसकी न हो ना, क्या भोग होगा? कल बता रहे थे हमें कि माया के द्वारा निग्रह शक्ति न हो, सच्चाई यदि ना ढके, तो क्या भोग होगा? होगा ना, सच्चाई यदि मालूम पड़ जाए तो कोई भोग होगा? संबंध नहीं बनेगा, है ना। माया न हो तो आपका संबंध नहीं बनेगा किसी से, आविधिक संबंध बनेगा नहीं। परमात्मा क्या करता है? माया भोजयन, माया के द्वारा भोग कराता है न हम लोगों को, है ना। तो चेतन कितने हो गए फिर? तीन हो गए, कोई बोलेगा, है ना। विश्व है, तेजस है और प्राज्ञ हो गया। कहते कि नहीं भाई, आदमी तो एक ही है, चेतन तो एक ही है। इसलिए बोलते हैं देखो माया संख्याया, ये तीन हो गए ना, ये तीन संख्या किसको लेकर आ गई? माया को लेकर के। माया का परिणाम जो अवस्था है, जागृत है, सपना है, सुषुप्ति है, लेकिन है तो एक ही है, इसलिए माया संख्या। ये सब कहां पर परिकल्पित है? अवस्था भी है ना, अवस्था का अभिमानी जो जीव है, केशव तुरीयम। तुरीय किसको बोलते हैं? चौथा, चौथा है ना। ये तीन की अपेक्षा वो चौथा हो गया शुद्ध ब्रह्म। विश्व तेजस प्राज्ञा तीन हो गए ना, इसकी अपेक्षा चौथा क्या है? तुरीय चेतन। तुरीय किसको बोलते हैं? चौथा। चतुर्नाम पूर्णाम विधि तुरीयम, चार संख्या की पूर्ति जिसमें हो रही है शुद्ध ब्रह्म में, है कि नहीं? वो चौथी संख्या जो आ गई ना, ये भी किसको लेकर के? माया को लेकर हो गया ना। आदमी तो, चेतन तो एक ही, सब परिकल्पित है। तुरीय ब्रह्म में ये जागृत अवस्था ही परिकल्पित है, जागृत के अहिमानी जो है जीव ये भी कल्पित है, और ये व्यवहार हो रहा है माया को लेकर के, ये सब के सब तुरीय ब्रह्म में परिकल्पित है। तो परिकल्पित कहां पर होगा? अधिष्ठान में होगा। जो सभी का अधिष्ठान है उसी में न कल्पित होगा भाई। जैसे सर्पादे जितने भी कल्पित है किसमें है? रज्जु में, रस्सी में, क्योंकि रस्सी अधिष्ठान है, वो सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, समझ में ना, सत्य होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर बोलते हैं तुरीय चैतन्य कैसा है? परम अमृतम अयम ब्रह्मा। ब्रह्म के तीन विशेषण लगा दिया तुरीय ब्रह्म के, कौन कौन? एक हो गया परम, दूसरा हो गया अमृत, तीसरा हो गया अज, है ना। पर मतलब निरतिशय, पर का अर्थ क्या होता है? निरतिशय। ये अमृत जो है ना, भी स्वर्ग में जाकर भी अमृत मिलता है, स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर भी क्या मिलता है? अमृत। लेकिन कैसा अमृत है? सापेक्षिक अमृत है। यहाँ पर जो है भोग करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया, दुकान जाओ, रसगुल्ला लाओ, खाओ, है ना। ये सब जो है डायबिटीज की भी संभावना है, सब जो होती है, भय भी होता है कि नहीं, है ना। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है, जो चाहेंगे इच्छा मात्र से ही मिल जाएगा, है ना। इसलिए स्वर्गीय सुख को क्या बोलते हैं? अमृत, है ना। लेकिन जब तक पुण्य है तब तक ना रहेंगे, अमृत मिलेगा स्वर्ग में, है ना। पुण्य समाप्त हो गया तो क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, कहा भगवान ने। जैसे आप किसी होटल में जाएंगे यात्रा में, है ना, जितने दिन का बुक है होटल में उतने दिन तक ना रहेंगे जी, कि जबरदस्ती रहेंगे? नहीं रह सकते। गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में रिजर्वेशन करा करके जहां तक रिजर्वेशन है वहां तक जाएंगे, है कि नहीं है? उससे तो आगे नहीं जा सकते ना, टीटी पकड़ लेगा तुरंत, समझे कि नहीं। तो इसी प्रकार यहां पर है, स्वर्गीय सुख तो अमृत है लेकिन सापेक्ष अमृत है, निरतिशय नहीं है ये। लेकिन परम जो अमृत है ब्रह्म का, वो निरतिशय है ना। और तीसरा विषण बोल दिया अजम, अजम कह दिया, अजम अविनाशी, इसका नाश तो कभी न जायते मृतेवा कदाचिन, नायम भूता भविता न भूया। ये किसके लिए कहा गया? आत्मा के लिए। आत्मा अपना स्वरूप कैसा है? अज है। शरीर की उत्पत्ति होती है, आत्मा की उत्पत्ति तो आरोप होता है। शरीर की उत्पत्ति, जैसे विषय की उत्पत्ति होने से ज्ञान की उत्पत्ति बोल देते हैं, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति तो नहीं होती। अरे आत्मा की उत्पत्ति यदि हो जावे, फिर उत्पत्ति का साक्षी कौन होगा, है कि नहीं? साक्षी तो भिन्न होगा, साक्षी भिन्न होगा कि नहीं होगा, है ना। इसलिए नए जो थे ना उदन आचार्य, वो बोलते हैं तुम आत्मा की उत्पत्ति होती हो बोलते हो, है ना। तुमने कभी देखा है कि आत्मा की उत्पत्ति को कभी देखी है क्या? आत्मा की उत्पत्ति होती है, नहीं देखी है तो नहीं देखी है तो कैसे फिर बकवास करते हो कि आत्मा की उत्पत्ति होती है, आत्मा का नाश होता है? तुमने देखा नहीं कभी तो बोलोगे कैसे? अजय देखा है तो देखने वाला कौन हुआ? तो देखने वाला भिन्न ना होगा भाई, है कि नहीं? इसलिए आत्मा यदि दुखी भवे, दुखी ना कह साक्षी भवे, वार्तिकार बोलते हैं अपने सुरेश्वर आचार्य। आत्मा यदि दुखी भवे, आत्मा का जो स्वभाव दुखीपना हो जावे, तो दुखीपना का साक्षी कौन होगा? भिन्न होगा कि नहीं होगा? इसलिए आत्मा तो स्वरूप से कैसा है? अजय है, उसका नाश कभी नहीं होता है। ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो तुरीय ब्रह्म है यत, वो तुरीय ब्रह्म ही माया को लेकर के ये भोग कराता है चिदाभास को, हो गया ना। उसकी माया जब तक है तब तक भोग होगा, है ना। तो ऐसे जो तुरीय ब्रह्म है तत् नतोस्मि, हम तो उसी को क्या करते हैं, नमस्कार। उसी की शक्ति चाहिए हमको, जगत की शक्ति तो नहीं है। जगत की शक्ति से तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है, अपनी शक्ति से तो कल्याण होने वाला नहीं, उनकी शक्ति भगवान ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति से ही क्या होता है, एक ज्ञान होता है, हो गया ना। यमय वेश वृणुते बोल दिया ना कठोपनिषद, क्या बोल दिया, यमय वेश वृणुते तेन लभ्य, ये परमात्मा जिसको वरण किया अर्थात परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर है, है ना, वही तरेगा ना, दूसरा क्या तरेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसे तुरीय जो परमात्मा है उसको क्या करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार कर दिया, देखो यहाँ पर बता दिया कि तत् ब्रह्म को बता दिया, तत् पदार्थ को बता दिया, वो तत् पदार्थ कौन है, शुद्ध ब्रह्म, जिसको प्रज्ञानम ब्रह्म करके आरम्भ किया है ना, उसी में सारा परिकल्पित है। तो विधि मुख से यहाँ पर उपदेश किया गया, विधि मुख, विधि मुख। दूसरा क्या होता है, निषेध मुख, निषेध मुख। तो निषेध मुख से यहाँ पर ये तुरीय ब्रह्म का ही उपदेश करते हैं द्वितीय श्लोक में, ये भी ऐसा ही छंद है। यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्राश्य भोगान स्थवेष्ठान पश्चाचन्यं समति विहवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान् सर्वाने तन् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पातसो नस्तुरीयः। यहाँ पर भी कह दिया पातु असौ नह तुरीय, अंत में बोल दिया ना, वो तुरीय जो परमात्मा है न हम लोगों को, है ना, क्या पातु रक्षा करे, कैसे रक्षा करेंगे, ज्ञान देकर रक्षा करेंगे और कैसे, है ना, परमात्मा ज्ञान देकर रक्षा करेंगे ना, और अनुग्रह करके कृपा करके रक्षा करेंगे। वो तुरीय चैतन्य क्या है, यो विश्वात्मा, स्थूल शरीर का अभिमान ही हो गया वो, देखो अज्ञान से स्थूल शरीर में अभिमान किया तो उसका नाम क्या पड़ गया, विश्व पड़ गया, विश्वत्मा, है ना, ये व्यष्टि में समष्टि में विराट हो गया, विराट हो गया। तो कह रहे हैं देखो विधिज विषयान, विधि मतलब कर्म, पाप कर्म पुण्य कर्म, पाप पुण्य कर्म हुआ है, हैं, उसके अनुसार आपको विषय मिल जाएगा, कितना भी छटपटाए आपको नहीं मिल सकता, जो नहीं है तो मिलेगा नहीं, आपने बीज बुआ नहीं है ना, तो फसल कैसे मिलेगा। कोई बोलते कि नहीं हम इतना मेहनत करते हैं, हैं, फिर भी हमारा व्यापार जो है ये व्यापार में घाटा हो जाता है, ऐसे बोलते कि नहीं, हाँ, हम तो किसी का अमंगल सोचा नहीं है फिर भी हमको इतना दुख मिलता है, बोलते ना कोई कोई है कि नहीं। लेकिन भी तुमने जो कर्म किया है उसका भोग कौन करेगा, इसको तो नहीं समझते लोग। अरे भी बाल्टी में यदि आप कुछ सामान नहीं भरे हैं, दाल चावल रोटी नहीं भरे हैं, रसगुल्ला है, तो परसेंगे कैसे बोलो, हाँ, केवल करची को घुमाने से निकलेगा बाल्टी से, दाल राम बोलते रहेंगे, दाल कैसे निकलेगी, पहले कुछ भरे होंगे तब ना निकलेगी, है कि नहीं है। इसी प्रकार पूर्वजन्म में हमने भरा नहीं है ना, अंतःकरण रूपी बाल्टी में यदि हमने कर्म को नहीं भरा है ना, तो फिर जो है वहां से कैसे निकलेगा, इस शरीर में कैसे निकलेगा वर्तमान में, है ना। तो ये तात्पर्य निकलता है ना, जो फसल काट रहा है मतलब जो भोग रहा है, इसका अर्थ है कि पहले बीज को बोया है, और अभी जो हम बीज को बो रहे हैं कर्म कर रहे हैं, इसका फल आगे काटेंगे, है ना। ये तो ये कर्म की विधि है, ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म के बिना तो भाई फल नहीं मिल सकता है ना। और कभी इस जन्म में फल मिल जाता है किसी कर्म का, और कभी अगले जन्म में भी हो जाएगा, कितने जन्मों में बीत जाएंगे। ये कर्मों के रहस्य को समझना ये आसान नहीं है, वही जानेगा, परमात्मा ही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। समझाए कि नहीं, है ना। जैसे परमात्मा की लीला को कौन समझेगा, वही जानेगा ना। ये भी कर्म भी उसी की लीला है भाई, है ना। भगवान ने मटकी को फोड़ दिया, अब क्यों फोड़ा तो आप कैसे जानेंगे। सही बात है कि नहीं है, नहीं जान सकते, है ना। तो महाभारत युद्ध में जो है पहले प्रतिज्ञा कर लिए थे कि हम तो अस्त्र नहीं उठाएंगे, देखो, और अस्त्र उठा लिया तो आप कैसे जानेंगे, है ना। हाँ, इसलिए जो कर्म का रहस्य को समझना जो है ना, परमात्मा लीला को समझना बड़ा कठिन है। लेकिन कर्म के बिना तो फल तो नहीं मिल सकता, ये बात तो सही है। लेकिन कब फल मिलेगा इसका निश्चय नहीं है, वही परमात्मा जानेगा। तो देखो, कहते हैं विधिय विषयान, कर्म से जन्य जो विषय है, प्राश्य भोगान स्थविष्ठान, स्थूल भोग को भोग किया जागृत अवस्था में, पश्चात समति समति विहेवान, उसके बाद सपना में चला गया, है सपना में चला गया भैया, सपना में चला गया तो कैसे भोग को किया, स्वेन सूक्ष्मान, सूक्ष्म भोग को भोग किया। सपनों का भोग कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म क्यों हो गया, क्योंकि अस्थिर है, बिना इंद्रिय से भोग रहा है, मन से ही भोग रहा है ना। अरे मन जागृत में भी हो जाता है, देखो कभी बताता हूँ, मनोराज्य होता है कि नहीं, हो गया ना। तो मनोराज्य में भी सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ देर के लिए तो मिलता है, मुझे इतना मिल जाए, ये करूंगा ये करूंगा, हाँ होता है कि नहीं होता है। तो ये हाँ, इसका विषय भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा, है ना। तो लेकिन भोग होगा ज्ञान के बिना, भोग होगा क्या, ज्ञान के बिना तो भाई भोग नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं स्वेन ज्योतिषा, अपनी ज्योति से अपना प्रकाश से ही भोग होगा। ये रोटी है, दाल है, ये ज्ञान ना हो तो क्या भोग होगा, हो गया ना। इसलिए ज्योतिषा कहते हैं। फिर स्वप्न में चला जाता है भैया, देखो वही बात कह रहे हैं, सर्वान एतान पुनरपि शनैहि, हैं जागृत में जो भोग हो रहा था विशिष्ट भोग, स्वप्न में जो विशिष्ट भोग होगा, भोग जब तक करेंगे तब तक क्लेश है कि सुख है वास्तविक, विचार करके देख लो, कितना बढ़िया भी चीज भोगे, है ना, वास्तविक सुख होगा या दुख हो रहा है, अरे क्लेश तो हो रहा है ना। कितना बढ़िया भी रसगुल्ला खाइए आप, है ना, तो खाते खाते थक जाएंगे नहीं थक जाएंगे, बोलो। कितना बढ़िया चीज भी देखो टीवी आदि में, देखते रहो हाँ, फिर भी थकेंगे नहीं थकेंगे भाई, हम तो सो जाते हैं एक दो घंटा, हो गया कि नहीं। चाहे स्थूल भोग हो चाहे सूक्ष्म भोग हो, भोग होगा तो भाई इंद्रिय से होगा ना, मन से होगा, और मन में जब व्यापार होगा तो क्लेश होगा निश्चित, क्लेश होगा तो थकेंगे, दुख होगा निश्चित, हो गए कि नहीं। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, सर्वान एतान पुनरपि शनैहि, धीरे धीरे सभी को छोड़ देता है और सुषुप्ति में चला जाता है, है ना। तो कहाँ पर रखेगा संस्कार को, अपने कारण आत्मा में रखेगा, समझ में ना। तो इसलिए कह रहे स्वात्मनि स्थापित्व, अज्ञात जो आत्मा है ना, क्योंकि आत्मा का तो भान नहीं हो रहा है ना सुषुप्ति में भी, मैं ईश्वर हूं परमात्मा ऐसा हो रहा है क्या भान, नहीं हो रहा है। इसलिए अज्ञात आत्मा में स्थापित करता है ना, तो सभी को छोड़ देता है, हित्वा सर्वान विशेषान, कि जो विशेष जितने भी है धर्म ये सब छोड़ देगा तो किस स्वरूप हो, क्या स्वरूप होगा, विगत गुणगण, सारे गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उसका जो कार्य है उसको जो छोड़ देगा तो अपना स्वरूप क्या होगा, तुरीय, तुरीय श्वेतन नहीं होगा। सभी का अपवाद करने पर वो तुरीय चैतन्य क्या करें, हमारी रक्षा करें। ये तो आपको मंगलाचरण बता दिया, एक हो गया विधु मुख से, दूसरा हो गया निषेध मुख से। तो विधि मोक्ष से निषेध मोक्ष से अध्यारोप करके अपवाद करके किसका ज्ञान कराना है? निष्प्रपंच तुरीय चैतन्य है उसका ज्ञान कराना है इस मांडुक के उपनिषद में। तो ये 12 श्लोक के आधार पर भगवान गौरपाद ने क्या कर दिया? 4 प्रकरण लिख दिया। 4 प्रकरण आगम प्रकरण है ना, वैतथ्य प्रकरण और क्या है, अद्वैत प्रकरण, चौथा क्या है, हाँ 4 प्रकरण। ये 4 प्रकरण क्यों लिखा है ना, इसका आपको तात्पर्य बता देंगे कल, संक्षिप्त से बता देंगे, होगा ना। 4 प्रकरण क्यों किया भगवान ने, इतना समझ लेंगे तो फिर 12 जो मंत्र है इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बहुत अत्यंत उपयोगी है। कारिका तो आरंभ नहीं करेंगे, लेकिन कारिका का तात्पर्य क्या है? 4 प्रकरण जो भगवान ने बनाया है और सारे वेदांत के तात्पर्यात्मक सार को संग्रह कर दिया 4 प्रकरण में, इसका तात्पर्य कल विचार करेंगे इसके ऊपर। ओम शांति शांति शांति।